ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे, ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग। उस दिन बाबा ने कहा सुप्रीम पुरुषोत्तम संगम युग बहुत बहुत अमूल्य है। यहां तुम्हारा सब कुछ अमूल्य है, श्वास, संकल्प, शक्ति, ज्ञान, गुण, समय, ये तुम्हारा सब कुछ अमूल्य है। इसलिए क्या करो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। हम कैसे व्यर्थ कमाते हैं? व्यर्थ शब्दों में, व्यर्थ बोल बोल कर, व्यर्थ सोच कर, व्यर्थ कर्म कर, बहुत कुछ व्यर्थ हम करते हैं। तो ये अमूल्य जीवन संगम युग का हम नष्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब कमाई का समय होता है तो समय थोड़ी गंवाते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये जो समय है ये पुरुषार्थ का समय है। कई समझते अभी तो अभी भी प्रारब्ध है तो प्रारब्ध प्राप्त कर लो, खाओ पियो मौज करो। बाबा मना नहीं करते, लेकिन बाबा ये जरूर कहते हैं कि हर कार्य मेरी याद में करो, ये है मेन बात। कई भक्ति मार्ग में कई ऐसे शब्द हैं जो हम ज्ञान मार्ग में नहीं यूज कर सकते, वो भी एक लिस्ट बन सकती है। क्या क्या शब्द हम भक्ति मार्ग में यूज करते थे, पर अभी हम ज्ञान मार्ग में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ज्ञान मिल गया ना। और उसमें से एक शब्द बाबा कहते प्रेरणा। भक्ति मार्ग में प्रेरणा शब्द बहुत आता है, लेकिन बाबा कहते प्रेरणा से थोड़ी कुछ होता है। प्रेरणा माना विचार। हम कई बार कहते हैं मुझे प्रेरणा नहीं आती है, माना मुझे ये विचार नहीं आता है। हमें जो प्रेरणा आती मैं ये करूं, माना विचार आता है ये करूं। भगवान को प्रेरणा हुई कि मैं सृष्टि रचूं, मैं आऊं, मैं जाऊं सृष्टि पर, तब प्रेरणा थोड़ी रची। वहां कोई पावर, कई बार कहते संकल्प भी नहीं चलता, लेकिन ड्रामा अनुसार जो जिसका पार्ट है वो उसी समय वो बचता है। तो कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है। हर चीज बाबा की विचित्र है। बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं वो भी विचित्र है, क्योंकि खुद चित्र रहित है। फिर हमें भी क्या कहते हैं, तुम भी विचित्र बन जाओ, चित्र रहित बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। तो आज की सारी मुरली है प्रेरणा पर। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 19/9/2025 है। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो क्या करना है, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है तो हमें उस पार्ट को अच्छे से अच्छा बजाना है, जो भी हमारा पार्ट है। इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। उसके लिए क्या क्या करना है वो बाबा ने बताया। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका तो अवतरण होता है, यह किस बात से सिद्ध होता है? किस बात से सिद्ध होता है कि उसका अवतरण होता है, वो प्रेरणा से नहीं करते हैं? उत्तर है, बाप को कहते ही हैं करण करावनहार, अब प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। भगवान को प्रेरणा आई, मैं दुनिया रचूं और रच ली, ऐसे तो नहीं होता है। तो प्रेरणा नहीं, उनको आना पड़ता है सृष्टि पर, सृष्टि को बदलना पड़ता है, उसके लिए ज्ञान देना पड़ता है। तो प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्म इंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते। भगवान को भी कर्म इंद्रियां चाहिए स्थापना करने लिए, प्रेरणा से नहीं करा सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है, इसलिए अवतरण होता है, प्रेरणा से नहीं होता। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं का मतलब क्या हुआ? गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी है। आत्माएं परमात्मा के सम्मुख बैठते हैं, माना आत्माएं अपने बाप के सामने बैठी है। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं, शरीर लेते हैं, तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है, वो भी शरीर में आते हैं, हम आत्माएं भी शरीर में हैं और सम्मुख होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो वो आता है दलाल के रूप में, दलाल में प्रवेश कर और बच्चों से मिलता है। तो कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब तुम बच्चे समझते हो ऊंच से ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जा सकता, वो लौकिक बाप है। ब्रह्मा अलौकिक बाप है और शिव बाबा पारलौकिक बाप है, वो परम पिता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो कि ऊंच से ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए गए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं, शिव बाबा के लिए परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं। परम आत्मा शब्द न भी डाला लेकिन परम पिता है, तो वो तो ऊंचे ते ऊंचा पिता है, वो तो कोई देहधारी नहीं होगा, तो भी हर्जा नहीं। परम पिता अर्थात सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं, चढ़ता है नशा, हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ये हो गई नई रचना। अभी हम अलौकिक जन्म लेते हैं, ये नई रचना है, फिर सारा कल्प पाठ बजाते हैं, ये हो गई नई रचना। रचयिता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा पाठ बजाया है। कैसा पाठ बजाया है ये रचयिता बाप ने समझाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है, पता थोड़ी था, बस 84 लाख योनियां समझते थे। अब क्या है कैसा है कुछ पता नहीं था। अब हमें पता चला कि हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तो बच्चों से ही बाप बात करते हैं। हाँ, कौन से बच्चों से बात करते हैं बाबा? जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है, तो हमने लगाया है 84 का चक्र, अब बाप हमसे बात करते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते, ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आते हैं, पाठ बजाया फिर घर गए, फिर पाठ बजाने आते हैं हर 5000 वर्ष के बाद। हम पाठधारी हैं, ऊंच से ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है, उनका भी पाठ है, प्रेरणा से नहीं करते हैं, पाठ बजाते हैं सृष्टि मंच पर आकर, उनका भी विचित्र पाठ है। अब ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ कहेंगे ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ? बाबा कहते नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे विचित्र पाठ ब्रह्मा और विष्णु का? क्योंकि दोनों ही चक्र लगाते हैं, तो इसलिए केवल एक शिव बाबा का ही विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु भी चक्र लगाते हैं, विष्णु का भी 84वां अंतिम जन्म ब्रह्मा है, और ब्रह्मा पहला जन्म बन जाता है, तो दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना विनाश पालना, स्थापना विनाश पालना, तो चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हैं उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये हो नहीं सकता है कि विनाश न हो, तो संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है, प्रेरणा से शंकर विनाश करता है, प्रेरणा से भगवान नई दुनिया रचता है। बाबा कहते हैं प्रेरणा शब्द ही रॉन्ग है, प्रेरणा अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है, कहते ना किसी को भाई चलो हम बाहर जाएं, चलो थोड़ा घूमें, ये मुझे प्रेरणा नहीं आती है, मना संकल्प नहीं आता, विचार नहीं आता कि मैं बाहर जाऊं। आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी, प्रेरणा किसको कहेंगे, प्रेरणा यानी विचार, प्रेरणा का कोई और अर्थ है ही नहीं। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है, अचानक बस ज्ञान अंदर में आ जाए, यहाँ प्रेरणा से ज्ञान नहीं मिलता, न प्रेरणा से कोई काम परमात्मा करते, न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्म इंद्रियों द्वारा पाठ बजाने, करण करावन हार है ना, तो इंद्रियों द्वारा पाठ बजाना भी पड़ता है, बजवाना भी पड़ता है। करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से, शरीर बिगड़ तो कर न सके, तो इन बातों को कोई भी जानते नहीं, न ईश्वर बाप कोई जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा बाप को, कोई में भी ज्ञान नहीं है। ऋषि मुनि नहीं जानते थे, देवताएं भी नहीं जानते थे, तो फिर आज के कलयुगी मनुष्य कैसे जानेंगे? तो बाबा कहते हैं ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा बाप को, कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, तो भगवान को आके डायरेक्शन देना पड़ता है। श्रीमत देते हैं, कौन सी डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है, तो तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो वो बाप है ये समझ नहीं सकते। परमात्मा हमारा पिता है, ये कैसे समझेंगे अगर वो सर्वव्यापी है तो सब पिता पिता हो गए, फिर बच्चे कहाँ से आए? पिता भी तब हो जब उनको बच्चे के हो। तो बाबा कहते सर्वव्यापी कहने से बाप समझ नहीं सकते। और दूसरा बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू भी नहीं आती है। अब वो सर्वव्यापी है तो परिवार कहाँ कैसे हुआ? तो तुम समझते हो ये तो बेहद की बाप की फैमिली है, परिवार है, भगवान का परिवार है। तो फैमिली है तो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? उनको कहा ही जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है, बाबा कहते शरीर है तभी तो आत्मा बोलती है कि बाबा वो मेरे मीठे बाबा। ये आत्मा किसका बोलती है? जब आत्मा को शरीर है। बिगर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं, भक्ति मार्ग में भी तो भगवान को बुलाते हैं ना, तो क्या समझते हैं? वो बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख। अभी तो हम नहीं पुकारेंगे ना, दुखी तो बहुत थे, बहुत पुकारा, हे दुख हरता सुख करता सुख दो दुख हरो, बहुत कहा। अब ये सब नहीं कहेंगे क्योंकि बाबा आए हैं सुख देने। तो बाबा कहते हैं शांति शांति धाम में सुख धाम में सुख मिलता है, यहाँ तो है ही दुख। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है संगम युग पर। शांति धाम सुख धाम दुख धाम ये ज्ञान भी बाबा कहते अभी मिलता है संगम युग पर। पुराने और नए के बीच में कब ये ज्ञान मिलता है? जब पुराना खत्म होने पर है, नया आना है, तो उसके बीच में ये ज्ञान मिलता है। तो बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो पहले हमेशा कहना चाहिए स्थापना पालना विनाश नहीं, क्या कहना चाहिए? स्थापना विनाश फिर पालना। तो पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना भी रॉन्ग है। ऐसे ही नहीं विनाश हो जाएगा फिर क्या होगा? तो पहले स्थापना करेंगे तब तो फिर विनाश होगा। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस ड्रामा में, उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं। अब उनको राजा का पार्ट बजाना है तो राजा की ड्रेस कोई घर से थोड़ी पहन के आते हैं। वो तो जब उनको मंच पर आने से पहले वहाँ उनका ड्रेसिंग रूम होता है, ग्रीन रूम होता है, वहाँ सारा श्रृंगार करते हैं, तैयार होते हैं। तो जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से तो साधारण कपड़े पहन कर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वो कपड़े उतार कर घर जाते हैं, फिर वापस जिन कपड़ों में वो आए थे वो कपड़े पहन करके घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना है, बिना कपड़े आना है। तभी तो इसलिए कहते हैं दुनिया में नंगे आए थे नंगे जाना है। तो वो समझते हैं कि ये कपड़ा पहन के नहीं आए थे, बच्चे नंगे ही तो पैदा होते हैं ना। फिर तो बाबा कहते हैं ये नंगे की बात नहीं है, पर शरीर रूपी वस्त्र नहीं पहन के आए थे, यहाँ शरीर रूपी वस्त्र मिला। वो कपड़े उतार कर घर जाते हैं तो यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है। यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़ा पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, ये है हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? बेहद का नाटक। उस हद के नाटक में भी हर एक को अपना अपना पार्ट होता है, तो बेहद के नाटक में भी हर एक को अपना अपना पार्ट है। तो अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है। फिर क्या होगा? फिर ये होगी नई दुनिया। वो बहुत छोटी है, नई दुनिया बहुत छोटी है। इस बेहद की कितने धर्म क्या नहीं है संसार में, और वहां तो बस एक ही धर्म होगा, तो कितनी छोटी दुनिया होगी। तभी बाबा कई बार कहते हैं ये बेहद की दुनिया है और सतयुग हद की दुनिया, क्योंकि राज्य भी तो लिमिटेड स्थान पर करेंगे ना, ऐसे नहीं कि सारी दुनिया में करेंगे। बाकी तो बाबा कहते हैं सब पिकनिक स्पॉट्स होंगे। तो वो बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहां है एक धर्म। अनेक धर्म अनेक मनुष्य होते हैं तो फिर बेहद हो जाती है ये दुनिया। वहां तो है ही एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए ही बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है, फिर क्या होता है उसका? इस समय जो प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। सब संगम युग के त्योहार है। शुरुआत कहाँ से होती है? शिवरात्रि से, शिव जयंती। ये सब त्योहारों की शुरुआत है। फरवरी महीना मानो शिव जयंती आई, उसके बाद सारे त्योहार आते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। अब नंबर वार कौन कौन से त्योहार है ये भी तुम बच्चे जानते हो। तो ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, ऊंचते ऊंच भगवान है तो उनकी जयंती भी सबसे ऊंच कहेंगे। वो जब आए तब फिर और त्योहार बने, क्योंकि सब त्योहार जो भी है वो शिव बाबा के साथ संबंधित है, भगवान के साथ संबंधित है। तो इसलिए वो जब आए उसके बाद और सब त्योहार बने। तो बाबा कहते हैं वो जब आए तब फिर और त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आकर के गीता ज्ञान देते हैं। तो शिव बाबा के आने से कौन सा त्योहार हो जाता है? गीता जयंती। गीता जयंती मनाते हैं ना, तो शिव जयंती के बाद है गीता जयंती। तो शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात गीता माना आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर कहेंगे गीता जयंती। फिर आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो फिर गीता जयंती हो गई। तो तुम बच्चे विचार सागर मंथन कर त्योहारों को नंबर वार लिखो। ये बाबा होमवर्क दे रहे हैं, फिर कौन सा उसके बाद त्योहार आना चाहिए, फिर कौन सा त्योहार आना चाहिए। बाबा कहते हैं ये इसका विचार सागर मंथन करके लिखो। तो तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबर वार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के, जो देवी देवता धर्म के होंगे वो ही समझेंगे ये सब बातें। तो हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है। भारत में जो त्योहार मनाते ये भारतवासियों का धर्म के त्योहार है। अब और धर्म वाले और ये सब क्या मनाएंगे, उनको तो पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे ना, तो हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं है। लेकिन अभी हम देखते हैं ना कैसे दिवाली दीपावली का त्योहार कहाँ कहाँ लंदन में मनाते हैं, तो विदेशी भी मनाते होंगे ना, अंग्रेज भी मनाते होंगे, अमेरिका में कहाँ व्हाइट हाउस में उसने भी वो दीपावली मनाई। तो इसीलिए आज तो जैसे भारत के त्योहार भी सब जगह मनाए जाते हैं। दूसरे धर्म वालों की तो बात ही नहीं, भल किसको दूसरा धर्म प्यारा हो तो भी उनमें तो आ न सके, जो जिस धर्म का होगा उसी धर्म में आएगा। अगर वो धर्म प्यारा है और वो कन्वर्ट हो जाता है उस धर्म में, तो फिर उसी धर्म का है, वो बीच में कन्वर्ट हो गया होगा और धर्म में। तो बाबा कहते हैं जिस धर्म की वो आत्मा है वो वापस उसी धर्म में आ जाएगी। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की तो बात ही नहीं। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा भी हो परंतु उसमें तो आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं, स्वर्ग में और धर्म वाले नहीं आ सकते ना। तभी बाबा ने उस दिन कहा ना, और धर्म वाले कहते हम क्यों नहीं आएंगे, तो हम कहते वहां तो है ही एक धर्म, तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का अपने को समझो, तो फिर क्यों नहीं आ सकोगे, परंतु उस धर्म का होना चाहिए। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो भी धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय ही आएंगे। इसलिए सतयुग में और धर्म कैसे आएंगे, उनका पार्ट ही नहीं है। तो जो जो जिस धर्म के हैं जिस समय आते हैं फिर उसी समय ही आएंगे। पहले पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे पहले पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर किसकी जयंती, फिर किसकी जयंती। आज बाबा ने कृष्ण जयंती नहीं कहा, बाबा ने कहा नारायण जयंती। हाँ, नारायण जयंती, फिर है नारायण जयंती। अब वो तो हो जाता सतयुग, वो फिर वो भी लिखना पड़े नंबर वार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वो भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी हो जाता। अब गीता का ज्ञान तो सुनाया फिर विनाश हो गया, तो फिर तो सब भूल ही गया ना, तो फिर विनाश हो जाता है। गीता का ज्ञान सुनाने के बाद फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलिडे नहीं मनाते। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख को बिल्कुल नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य कोई नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं। सतयुग त्रेता की तो हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को पता ही नहीं है, लेकिन द्वापर से हिस्ट्री ज्योग्राफी पता है। तो 2500 वर्ष, तो 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उनको तो उनको कितना समय हुआ कुछ भी नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ही नहीं सकता। कल्प की आयु 5000 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, द्वापर कलयुग जो आधा है उसमें तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा सतयुग त्रेता उसमें इनका राज्य था, इन देवताओं का राज्य था। फिर जास्ती वर्षों का कल्प कैसे हो सकता है, 84 लाख जन्म तो नहीं हो सकते ना। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, 4,32,000 वर्ष कहते कलयुग की आयु है, और उसमें से केवल 5000 वर्ष ही बीते हैं, इसीलिए कलयुग अभी छोटा बच्चा है। परंतु अभी धीरे धीरे समझने लगे हैं कि हाँ कलयुग छोटा बच्चा नहीं है, विनाश सामने खड़ा है। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, मनुष्यों को अंधियारे में डाल दिया है। कहां सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का, और कहां सिर्फ कलयुग के लिए कहते हैं अभी 40000 वर्ष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं, नहीं लड़ाई है कुछ नहीं है तो कहेंगे कि अभी तो 4,32,000 में से 5000 गया, या कभी कहेंगे 40000 बाकी है। परंतु जब कोई जोर से कोई लड़ाई लगती है कहाँ, तो समझते हैं कि भगवान को आना चाहिए। लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर, बीच में तो नहीं आएगा ना, उनको तो संगम पर ही आना है। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है, कब महाभारत लड़ाई कब लगती है? संगम पर। न सत्युग में लगती है महाभारत लड़ाई, न त्रेता में, न द्वापुर में, न कलयुग में। कलयुग का अंत और सत्युग के आदि, तभी तो सब विनाश होता है। महाभारत युद्ध में सारे कौरव खत्म हो गए। तो बाबा कहते हैं कि महाभारत तो लगती ही, लड़ाई लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होगा ना पुरानी का। इसके लिए फिर ये लड़ाई है। कौन सी? महाभारत की लड़ाई। इसमें शंकर की प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये शंकर की प्रेरणा नहीं है, ये ड्रामा अनुसार कैसे संकल्प उठा और कैसे ये एटम बॉम्ब बन सकता है, इतनी शक्ति प्रकट हो सकती है। तो बाबा कहते हैं इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं है। अंडरस्टूड है कि पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना हो रही है, नई दुनिया का कलम लग रहा है। तो कलम जब लगता है तो ऑटोमेटिक सिद्ध है कि पुराने का विनाश होना है। तो अंडरस्टूड है कि पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। तो नई दुनिया में ये बड़े बड़े लंबे लंबे इसका बाबा कहते टावर जो बनाए हैं ना दुनिया में, कितने लंबे लंबे मकान बिल्डिंग, वो सब बाबा कहते ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। तो बाबा कहते मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया में बाबा कई बार कहते एक मंजिला भी नहीं होगा, केवल ग्राउंड फ्लोर ही होगा। अब जो ऐसे अब बड़े बड़े होते हैं ना मकान, तो उनमें कहाँ कोई फर्स्ट फ्लोर भी होता है, सब ग्राउंड फ्लोर में ही सब होता है। तो बाबा कहते हैं मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली क्या थी? परस्तान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को तो स्वर्ग का ही कहेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को कभी द्वापर युग में थोड़ी दिखाएंगे या कलयुग में थोड़ी दिखाएंगे, वो तो स्वर्ग में ही दिखाएंगे। तो लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग के ही कहेंगे। तो तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है, दिखाया ना। आप म्यूजियम में जाएंगे, वहां पर ये वो तो कॉरोनेशन सेरेमनी है, लेकिन यज्ञ के अंदर दिखाया था, बाबा दिखाते थे कैसे वहां पर स्वयंवर सभा होती है और कैसे लक्ष्मी और नारायण का फिर कैसे विवाह होता है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है, इतनी पॉइंट्स हर मुरली में मिलती है, अगर वो याद नहीं पड़ती है तो बाबा कहते अच्छा बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा भी सुनाकर कहते अच्छा बच्चे अब बाबा को याद करो। तो मेन बात तो वही है, बाबा को याद करो, इतना ज्ञान की पॉइंट्स याद नहीं रहती है तो अच्छा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो क्या करो? टीचर को याद करो। अब टीचर भूल गया तो सतगुरु को याद करो, सतगुरु भूल गया तो सखा को याद करो। सब संबंध है बाबा के साथ। तो बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वो भी जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा और टीचर के साथ साथ और क्या याद रहेगा? नॉलेज भी याद रहेगी। टीचर ने मुझे ये सिखाया तो टीचर के साथ साथ वो जो सिखाया वो भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, फिर उद्देश्य भी बुद्धि में याद रहेगा कि इस पढ़ाई से मैं क्या बनूंगा। तो टीचर भी याद रहेगा, पढ़ाई भी याद रहेगी, और क्या मैं बनूंगा वो भी याद रहेगा, उद्देश्य भी बुद्धि में रहेगा। तो याद रखना ही पड़े, क्योंकि स्टूडेंट को तो ये याद रखना ही पड़ता है ना। क्यों बाबा, कहे तुम्हारी भी स्टूडेंट लाइफ है तो तुमको भी ये याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है। तो विद्यार्थी बनकर पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो कैसे ना हम ये सब याद रखें कि हमको कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इस पढ़ाई से क्या बनेंगे, वो सब याद रखना पड़ता। क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना, ये भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा बाप भी है। हमारा बाप भी हमारा टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता, इसका ये मतलब नहीं कि शिव बाबा हमारा बाप है तो वो लौकिक बाप नहीं है, वो भी है। तो लौकिक बाप गुम नहीं हो जाता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हम केवल शिव बाबा के बच्चे हैं, पर हम क्या कहते हैं, हमारे तीन पिता है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। अब इस अलौकिक को तो कोई याद नहीं करते, भक्ति मार्ग में भी दो को तो याद करते हैं, लौकिक और पारलौकिक। ब्रह्मा को कौन कोई नहीं याद करता। क्यों ब्रह्मा को याद नहीं करते, वो भी तो पिता है ना, आदि पिता है। तो क्यों बाबा कहते हैं उनको याद नहीं करते, क्यों, हाँ क्यों नहीं याद करते? ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है, लेना देना नहीं है। लेना देना तो बहुत है ना ब्रह्मा बाबा से। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं इनको याद करते हैं, क्योंकि लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, इसलिए लौकिक को याद करते हैं, अंत तक याद रहती है। हाँ, ब्रह्मा से कोई वर्षा नहीं मिलता है, लेकिन जब दादी जी ये पढ़ते थे ना मुरली, तो दादी कहती है क्यों बाबा आपसे भी हमें बहुत कुछ मिलता है, ऐसे ब्रह्मा बाबा क्यों कहते हैं कि हमसे कुछ नहीं मिलता है? सारे गुण शक्तियां हमने ब्रह्मा बाबा को देख करके अनुभव की ना, तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे धारण किए, प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। तो बाबा कहते हैं ये भी जानते हो कि वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता, लौकिक पारलौकिक और फिर ये है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहता है। हाँ, लौकिक पिता थोड़े भूलेगा, शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, फिर भूल जाएगा उस पिछले जन्म के पिता को, कहाँ याद करेंगे, नया बाप मिल गया, नया जन्म लिया, तो शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। तो जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं, पारलौकिक बाप को तो दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़ी है। हाँ, इसलिए दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं थी लाइन, दादी के नहीं 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 नहीं, हाँ बाबा ऐसे क्यों कहते, इनसे कुछ नहीं मिलता। हाँ, इनसे कुछ मिलता थोड़ी है, इनको अलौकिक कहा जाता है। अलौकिक से हम सकाश तो लेते हैं ना, क्यों नहीं लेते हैं, भले स्थूल चीज कुछ नहीं मिलती, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना हुआ है, ये भी पढ़ता है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं पर ये भी पढ़ता है, तो निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़े, तो क्या नाम रखा है भक्ति मार्ग में इस रथ का, क्या नाम रखा है, भागीरथ। भागीरथ विभागीरथ ने गंगा को भारत में लाया, और ब्राह्मण दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना, तो ये है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है, ये रथ कभी बाबा को छोड़ेगा नहीं, शिव बाबा को माया का नहीं बनेगा। बाकी बच्चे तो बाबा के बनते फिर बाबा को छोड़ के चले जाते, ये थोड़ी छोड़ेगा बाबा को। तो रथ कायम ही रहता है, इसीलिए शिव के साथ नंदी गरुड़ दिखाते हैं। नंदीगण क्या है, ये रथ है ना शिव बाबा का। तो कहाँ भी शिव का लिंग होगा, कहाँ भी मंदिर होगा, नंदीगण जरूर होना चाहिए। तो रथ तो कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। वो बाबा के बच्चे न भी बने मर जाए, पर रथ तो कायम है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं तो औरों का क्या ठिकाना। ये रथ तो मुकरर है ड्रामा अनुसार, सदा ही मुकरर है, अभी भी मुकरर है। अभी भी संदेशियां जाती है, ध्यान में जाती है तो अव्यक्त बाप दादा को देखती है ना, तो अव्यक्त ब्रह्मा तो दिखाई देता है ना उनको। तो शिव बाबा उनके रथ में कैसे मिलते हैं, तो अव्यक्त रथ भी है। साकार में तो गुलजार दादी का रथ लिया था, पर अभी अव्यक्त रथ तो ब्रह्मा का है ना, तभी तो दोनों मिलते हैं। तो ये रथ तो मुकरर है ड्रामा अनुसार, इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, तुम्हारा ये साकार शरीर भाग्यशाली रथ नहीं है, पर ब्रह्मा बाबा का भाग्यशाली रथ है, क्योंकि शिव बाबा उनमें आते हैं। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, भाग्यशाली रथ एक ही माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पढ़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए इस तन की आत्मा पवित्र बन जाती है, इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तब हम आत्माएं पावन बनती है। तो बाबा कहते हैं बलिहारी तो इस रथ की है ना जिसमें बैठ पढ़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, अमूल्य जन्म है ये। फिर शरीर बदल कर हम देवता बन जाएंगे, इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारा पहले जीवन कैसा था, कैसा जीवन था बाबा का बनने से पहले, वर्थ नॉट अ पेनी, कौड़ी तुल्य था। कौड़ी की भी वैल्यू होती है, उसकी भी बाबा कहते हैं ये रथ की वैल्यू नहीं। हमारा पहला जीवन वर्थ नॉट अ पेनी था, अब पाउंड बन रहा है। का पेनी, 100 पेनी होती है 1 पाउंड में, ये इंग्लैंड का पैसा है। तो परंतु कहाँ 100 और कहाँ केवल 1। तो बाबा कहते अब पाउंड बन रहा है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य, इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, परंतु फिर परंतु क्यों आता है, स्वर्गवासी तो सब बनते हैं परंतु फिर है पढ़ाई पर मदार, कितनी पढ़ाई पढ़ते हैं उस अनुसार पद मिलता है। फिर है पढ़ाई पर मदार, तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ऊंच पद पाने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशंस नहीं थी, क्वालिफिकेशंस माना वो जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना, तो उनके अनुसार जो उनकी डिग्री मिलती है वो सब उनकी क्वालिफिकेशंस कहलाती है, वो डिग्रियां जो पढ़ाई से उनको मिलती है। तो पहले हमारे में भी कोई क्वालिफिकेशंस नहीं थी, आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं और ईश्वरीय मत से फिर चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है और आसुरी मत देने वाले कितने हैं, एक है या अनेक है, अनेक है। रावण उनमें बैठ जाता है, वो आसुरी मत देने वाला जो होता है उसमें रावण बैठा हुआ है। तो वैसे तो कहेंगे वो रावण है, लेकिन मुख तो सबका अलग अलग है ना, तो आसुरी मत देने वाले अनेक है। माँ बाप भाई बहन टीचर गुरु कितनों की मत मिलती है, हर एक को कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। एक की मत हमें मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्री मत पर चलना चाहिए ना। हाँ, जो मत हमको 21 जन्म काम आए उसकी मत पर चलना चाहिए ना। तो जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद पाएंगे, सीधी बात है। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है जिसने श्री कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते हैं फिर रावण सांवरा बनाते हैं, तो बाप वर्षा देते हैं वो तो है ही वॉइसलेस, वर्षा वॉइसलेस दुनिया का, तो बाबा कहते हैं वो तो है ही वॉइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को तो सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व का मालिक बनते हैं। संपूर्ण निर्विकारी तो संपूर्ण विश्व का मालिक बनते हैं। अभी नहीं है फिर बन रहे हैं। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे, नहीं जो आते उनको भी हम समझाते ना, तुम तो वास्तव में तुम भी ब्रह्मा की संतान हो, क्योंकि सारी दुनिया ब्रह्मा की संतान है। तो ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे, वो है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे, तो ये ब्राह्मण कुल है। ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है, यहाँ कोई राजा रानी नहीं है, सब बस भाई बहन ही है एक मात पिता के। यहाँ राजा रानी की बात नहीं है, ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा सा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की है, वास्तव में दोनों की राजाई नहीं है ना। तो इसीलिए अभी न हमारी कोई राजाई है न अभी कोई भारत में राजाई है, प्रजा का प्रजा पर ही राज्य है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वॉइसलेस बनना है, निर्विकारी बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। नया शरीर नहीं मिलेगा धारणा करने लिए, पुराने शरीर में बैठकर बाबा कहते हैं बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। ये है बहुत वैल्यूएबल जीवन, अमूल्य जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूरत। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूरत भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है, कहां मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहां प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, इसलिए अल्पकाल के आधार से प्राप्तियों से विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। बहुत बड़ा काम बाबा देते हैं। स्लोगन, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। समय को सफल करो, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इसके अंतर्गत जैसे सूर्य की किरणें फैलती है ना, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इस स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। विघ्न विनाशक स्थिति में स्मृति में कार्य करो तो विघ्न सामने तक नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो भट्ठी वालों की तो भट्ठी चलती रहेगी। अच्छा, मुरली क्लास के बाद सभी भट्ठी के भाई बहने यहाँ बैठे रहेंगे, सभी से टीचर्स बहने मिलेगी, इसलिए योग के बाद जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहने हैं वो सब यहाँ बैठे रहेंगे, आपसे टीचर्स आपकी मिलेगी। और किसी ने शरीर छोड़ा, इतना बड़ा परिवार, रोज कोई न कोई देह त्याग करते हैं, तो न्यूज आती रहती है। कोरबा सेवा केंद्र इंदौर जोन के समर्पित कुमार आनंद, क्या है, अनगपाल, आनंदपाल,
आनंदपाल,
ये द है,
गलत लिखा उन्होंने,
गलत लिखा है, आनंदपाल, आनंदपाल पांडे भाई, उसने 17 तारीख को अपना शरीर त्याग किया, उम्र 60 वर्ष का था, उनको योगदान देवे। कोरबा छत्तीसगढ़ की बहन ने लिखा है, कोरबा हमने, हम गए हैं कोरबा, मुझे याद है कोरबा, बहुत वहाँ पूरी खाने हैं, कोयला बहुत वहां से निकलता है धरती से, तो हम गए थे तो सारा शहर में कोयला भरा पड़ा है, और इतनी गर्मी थी बात मत पूछो। और हमने वहां पर शाम को 4 बजे प्रोग्राम रखा था और बिजली चली गई। आप सोचो क्या हाल हुआ होगा, पसीना बह रहा है और हम भाषण कर रहे हैं, बताओ ऐसा हाल था। बहुत गर्मी होती क्योंकि नीचे से बहुत कुछ निकलता है, उनका कोयले की खान जैसे है नीचे धरती में। चलो, बाबा को याद करेंगे, उस आत्मा को योगदान देंगे, और फिर भट्ठी वाले भाई बहने बैठे।